हरे कृष्णा, आपका प्रश्न है। श्रीमद् भगवद गीता 9.23 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये अप्यन्य देवता भक्ति यजन्ति श्रद्धयान्विताः तेति मामैव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। तो ये अब अन्य देवता भक्त क्यों आया है? अन्य का मतलब होता है दूसरे। देवी देवता तो 33 करोड़ ही हैं, फिर अन्य शब्द को किसके लिए लिखा गया है? क्या कृष्ण भी देवता है? बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। मैं हृदय से प्रयत्न करूंगी आपके इस प्रश्न को इतना अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। गुरु महाराज से प्रार्थना है कि वो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपकी इस जिज्ञासा को कंप्लीट कर सकूं। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो श्रीमद् भगवद गीता का सेंटर से एक श्लोक लेकर हम लोग उस पर बात करते हैं ना, वो कंप्लीट बात नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर श्लोक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, दूसरे से रिलेटेड श्लोक होता है। ऐसे नहीं, अब देखो श्रीमद् भगवद गीता कन्वर्जेशन है। अब कन्वर्जेशन में क्या होता है, जो चीज हम पहले आपको बता देते हैं ना, उसके बारे में ही डिटेल से बता रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कन्वर्जेशन में अब भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद भगवद गीता अर्जुन को कितने टाइम में दी? 2.25 घंटे में। अब ये सेंटर का टाइम है, जब नौवां अध्याय चल रहा होगा तो सेंटर है। अभी इससे पहले बहुत कुछ बोल चुके हैं भगवान, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको श्लोक नंबर 3 बताऊंगी, इसी अध्याय का श्लोक नंबर 3, अगर उसको कंसंट्रेट करेंगे ना, फिर हम आगे के श्लोकों को समझ सकेंगे। ठीक है, ये कन्वर्जेशन है, एक गीत है। गीत में जैसे कैसे होता है, एक मिसरा फिर दूसरा मिसरा उससे रिलेटेड होता है, ऐसे है। ठीक है, अब श्लोक नंबर 3 को देखेंगे। आपने भगवद गीता की बात की है, अभी तो मैं आपको सिद्धांत समझा रही हूँ, श्रीमद् भगवद गीता के अभी तो बता रही हूँ मैं आपको कि इसको क्यों समझना चाहिए, भगवान कौन है, कृष्ण कौन है। लेकिन अब श्लोक की बात की है तो आपको शास्त्र खोल के देखना पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 3, भगवान कहते हैं, अशद्धदानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कह दिया कि भले मैं कितना ही कृपालु क्यों ना हो, भले आप मुझे करुणा सिंधु बोलते रहो, भक्त वत्सल बोलते रहो, लेकिन जब तक आपकी मेरे अंदर, मेरे शब्दों के अंदर श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आप जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहोगे। माँ साफ साफ लिखा है अप्राप्य माम, आप तब तक मेरे अंदर श्रद्धा नहीं रखोगे, मेरे शब्दों के अंदर विश्वास। और श्रद्धा का मतलब बताऊं क्या? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, ऐसा विश्वास कि कृष्ण जो कह रहे हैं और गुरु महाराज जो मुझे समझा रहे हैं उस पर मेरी पूरी श्रद्धा है। जब कोई श्लोक पढ़ते हैं, जब कोई श्लोक को सुनते हैं, तो उस टाइम पर हमें हमारे मन में पता है क्या होना चाहिए कि मैं पूरा प्रयत्न करके रहूंगा, इसको समझने का प्रयास करूंगा। हमारी बुद्धि पता है क्या है, मैं खुद भी ऐसी पवित्र नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बात बता रही हूँ शास्त्र में। हमारी बुद्धि क्या होती है, जब हम लेक्चर सुनते हैं ना, तब हम सोचते हैं कि कैसे इसमें से डाउट्स निकालूं, मैं कैसे इसमें से संशय निकालूं, ये नहीं होता है मैं कैसे इसे समझने का प्रयत्न करूं। जैसे हम स्कूल में कैसे पढ़ते हैं, हमारी टीचर समझा रही होती है तो हम क्या सोचते हैं कि मुझे इस लेक्चर को एनी हाउ समझना है, फिर नहीं समझ में आता फिर क्वेश्चन करते हैं। लेकिन जब हम लोग मैथोलॉजिकल कोई प्रोग्राम में जाते हैं ना, जैसे कोई अगर हम लोग है ना भगवद गीता के लेक्चर में, या फिर हमारे माइंड में क्या होता है, कहाँ से सवाल निकालूं, समझना है नहीं समझना है, इस पे नहीं गौर करते हैं, कहाँ से सवाल निकालूं। तो यहाँ पर क्या है, भगवान कहते हैं अश्रद्धा, तो ऐसे लोग होते हैं जिनको श्रद्धा नहीं होती है, वो बस सुनने के लिए या फिर ऐसे ही टाइम पास करने के लिए सुनते हैं, और श्रद्धा नहीं होती है तो वो कभी भी भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त नहीं कर सके। तो हम लोग कभी भी कुछ सुन रहे हैं अगर आध्यात्मिकता में, तो चैलेंजिंग मोड में सवाल नहीं करना होता है। सवाल करने से पहले हमें भगवान ने बताया तरीका 4.34 में कि आपको जिससे सवाल पूछना है तो आपको कैसे तरीके से जाना है, भगवान की भगवद गीता पर यदि फॉलो करना है तो शुरू से लेकर आखिर तक साफ कहा भगवान श्री कृष्ण ने, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा जब तक तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी। क्यों? भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब तुम्हारे अंदर श्रद्धा होगी, क्या श्रद्धा का मतलब है? श्रद्धा का मतलब है कि जो लिखा हुआ है, जो बोला जा रहा है वो 100% सही है, मुझे उसे समझना है बस। तो आप लोगों ने जो आंसर दिया है या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन किया है, वो एकदम 100% श्रद्धा का प्रमाण है। और भगवान श्री कृष्ण ने बताया 10.9 में, इतना अच्छा लग रहा था जब आप लोग आंसर दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर तरीके से बोलते हैं, मत्सिता मत्कता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्जुन को बोले, अर्जुन पता है मेरे भक्तों को किस तरह से पहचाना जाए? आप मेरे भक्तों को कैसे पहचानोगे? कि जब मेरे भक्त मिलेंगे ना तो मेरे बारे में बात करेंगे, मैंने जो बात की ना उसी को डिफाइन कर रहे होंगे, कृष्ण ने ऐसा कहा तो ऐसा क्यों कहा, कृष्ण ने ऐसा कहा है तो इसको क्लियर करेंगे, इसको और भी एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे को बोधयंतः परस्पर, एक दूसरे को बताने की कोशिश करेंगे कि कृष्ण ने इसलिए कहा है कि, तो ये भक्तों के लक्षण है। आपको पता नहीं है कि आप कितने अच्छे भक्त हो जो भगवान के भाष्य को इस तरह से एक दूसरे को बताने का और समझाने का और पूछने का प्रयत्न कर रहे थे। यही भक्ति है, कृष्ण के विषय में बात करना, कृष्ण के विषय, कृष्ण के बोले हुए शब्दों को दोहराना, एक दूसरे को समझाना, इसी को भक्ति कहते हैं। साफ साफ भगवान ने कहा है भगवद्गीता में कि इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई प्रिय है ही नहीं। तो अब हम श्लोक आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है ना वो श्लोक नंबर 23 में है, लेकिन ये कन्वर्सेशन जो है, ये टॉपिक जो है वो बहुत पहले से शुरू हुआ हुआ है। अभी हमने तीसरा श्लोक पढ़ा और उसके बाद से अगर हम लोग पूरा ये अध्याय इसी पर चल रहा है, लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ से श्लोक नंबर 17 में भगवान ने कहा, पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेवच। मैं इस जगत का पिता हूँ, माता हूँ, पालन करने वाला हूँ और जानने योग्य हूँ। इसके अलावा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। यानी कि अब इसको हम लोग पूरा पीछे से अगर बेक से जाएंगे ना, तो भगवान ने कहा ऋग्वेद में, सामवेद में और यजुर्वेद में जिन जिन देवताओं के बारे में लिखा हुआ है वो सब मैं हूँ। और पितामहस्य जगतो, पिता का मतलब होता है जिसने पैदा किया है। तो संसार शास्त्र वेद में क्या लिखा हुआ है, सारी सृष्टि को ब्रह्मा जी ने पैदा किया, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि सब सारे जगत में जितने भी हैं उनके वास्तव में पिता माता और पितामह, पितामह का अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पिता भी मैं हूँ और पितामह भी मैं हूँ। देखिए हमारे पिता अलग होते हैं, पितामह मतलब दादा, ठीक है, पिता अलग होते हैं और दादा कौन होते हैं, उनके पिताजी होते हैं, ठीक है, जो हमारे पिता हैं उनके पिताजी को दादा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान ने साफ साफ कह दिया, पितामहस्य जो जगत हो माता दाता पितामह, मैं पिता भी हूँ, मैं पितामह भी हूँ। तो ऐसे कैसे हो सकता है, या तो कोई पिता बन सकता है या पितामह बन सकता है ना। लेकिन अगर कोई पिता भी है और पितामह भी है, उसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि वो बाप भी है और अपना भी बाप है, वो मेरा भी बाप है और अपना भी बाप है, उसका बाप कोई है ही नहीं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद में भले जो भी लिखा हो, लेकिन वास्तविक पिता सृष्टि का, संसार का मैं हूँ और मैं अपना, मेरा भी कोई पिता नहीं है, मैं अपने आप से प्रकट हुआ हूँ, ठीक है। आगे भगवान ने कहा, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास है शरणम सोह प्रभव प्रलयम स्थानम निधनम बीजम अव्ययम। और आगे भगवान इसी चीज को आगे लेकर जाते हैं, गति मतलब लक्ष्य, तुम्हारी मंजिल भी मैं हूँ और संसार में रहकर भर्ता यानी कि तुम्हें पालन करने वाला भी मैं हूँ, स्वामी भी मैं हूँ तुम्हारा, एक तो तुम्हारा स्वामी हूँ, तुमको निर्णय देने के लिए अनुमति कर, निर्णय करने के लिए अनुमति दे रहा हूँ, और साक्षी भी मैं हूँ, परमात्मा के रूप में जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है ना वो भी मैं हूँ, धाम भी मैं हूँ और शरण स्थली जिसकी शरण ली जाए ना वो भी मैं हूँ, और अत्यंत प्रिय मित्र भी मैं हूँ जो तुम्हें सही सलाह दे रहा है ना संसार में। अब देखो जो जो भगवान, इसकी बदली में क्या है, अब लक्ष्य अगर हमारा कोई और है लेकिन वास्तविक लक्ष्य जो हम पालन कर जिस पर हमें पहुंचना है वो कृष्ण है। साक्षी कोई और संसार में कोई और हो सकता है, लेकिन वास्तविक हमारे कर्मों का साक्षी भगवान है। शरण तो हमें कोई भी दे सकता है संसार में, लेकिन भगवान बोल रहा है भले जिसके जरिए भी तुम्हें शरण मिल रही है तो वास्तविक शरण स्थली मैं हूँ। आगे बोला प्रिय मित्र मैं हूँ। तो संसार में हमारे कितने सारे प्रिय मित्र होते हैं, हम बोलते हैं कि मेरा इतना सौभाग्य है कि आप मेरे मित्र हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें भले उसका रूप नजर आ रहा हो लेकिन वास्तविक प्रिय मित्र मैं तुम्हारा हूँ। भले उसके रूप में तुम्हें मिला हूँ लेकिन वो भी मैं ही हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, इस संसार की सृष्टि भी मैंने की है उसका प्रलय। अब सृष्टि करने वाला तो कौन है, ब्रह्मा जी है ना। अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सब ऐसा बता रहे हैं जो वेदों से अलग है, क्योंकि सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी हैं, प्रलय करने वाले शिव जी हैं। लेकिन भगवान आगे बताते हैं सबका आधार, यानी कि जो ये जो सृष्टि करने वाले प्रलय करने वाले जितने भी देवी देवता हैं, शिव हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, जैसा कि आप बता चुके हो कि ये सब भगवान ही हैं। आश्रय तथा अविनाशी बीज, भगवान ने कहा जो बीज है जिस सारी संसार में महातत्व में जो बीज डाला गया है जिससे प्रकृति ने सब कुछ उत्पन्न किया है वो भी मैं हूँ। और आगे भगवान श्री कृष्ण 19 में कहते हैं तपाम्यहमहम वर्षम निगृणामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 19 में अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग कार्यों का बताया। अब मैंने सुबह को बताया ना आपको कि सूर्य देव का क्या काम होता है, इंद्र देवता का क्या काम होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते बल्ले ये सारी चीजें मैंने उनको डिपार्टमेंट दिया हुआ है, लेकिन वास्तविकता क्या है तपाम्यहम, यानी कि अगर संसार में गर्मी पैदा होती है सूर्य की वजह से भले हो रही है लेकिन वास्तविक जो है उसको शक्ति मैं दे रहा हूँ। तपाम्यहम अहम वर्षम, वर्षा के कौन बरसाता है, इंद्र बरसाते हैं ना, हमारे वर्षा के देवता इंद्र हैं। लेकिन भगवान बोलते छोड़ो उसको, अहम वर्षम मैं वर्षा करता हूँ। निग्रणाम उत्सृजामि, यानी कि मैं जो निग्रहण करता हूँ, यानी कि जैसे क्या होता है सूर्य बहुत तेज तप जाता है फिर वाटर साइकिल होता है ना, समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर बादलों में बादल बन के चला जाता है, तो इसको बोलते हैं निग्रहणाम उत्सृजामि। पहले तो सूर्य बनकर संसार में तपस पैदा करता हूँ और पानी को ऊपर लेकर जाता हूँ, भाप बनाता हूँ, फिर इंद्र बनकर उस पानी को वापस से बरसाता हूँ। अमृतम चैव मृत्युच, संसार में अगर कोई नहीं मरा है, यानी कि जो जिंदा है, अमर है, अभी तक जी रहा है, जो आत्मा है वो भी मैं हूँ, मेरा ही अंश है, और मृत्युश्च जो प्रकृति है जिससे ये शरीर बना है जो नाश हो जाती है वो भी मैं हूँ। सदसत चाहम अर्जुन, भगवान ने सत और सच असत को वापस से बताया। पहले एक दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था ना, 2.16 में भगवान ने बताया था न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, के अविनाशी जो भगवान ने कहा था कि असत यानी भौतिक शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है और जो सत है यानी आत्मा उसका कभी नाश नहीं होता। तो भगवान अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सदसत चाहम अर्जुन, चाहे वो आत्मा है चाहे शरीर है जो कुछ भी है मैं हूँ, मेरा ही अंश है, मेरे ही पावर है जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, चाहे वो प्रकृति है, पदार्थ है, जीव है, आत्मा है, देवता है, जो कुछ भी है वो मेरा ही अंश है, मैं हूँ, वास्तव में मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, भगवान ने कहा मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, यानी भगवान कह रहे हैं देखो अर्जुन चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, वर्षा हो, वर्षा करने वाला देवता इंद्र हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, जो भी हूँ मैं हूँ, दूसरा कोई देवता नहीं है, दूसरा कोई देवता नहीं है, मैं ही हूँ। वो सारे देवता जो तुम्हें नजर आ रहे हैं ना वो भी मैं ही हूँ, मेरा पावर है, मैंने अपने पावर से अपनी शक्ति से दूसरे देवताओं को बनाया है लेकिन मैं हूँ, वास्तव में जो कुछ भी हूँ वो मैं हूँ। ठीक है, अब आगे त्रैविद्यामाम सोमपाह पूत पाप यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यां दिविदैव भोगान्। भगवान कहते हैं तीनों वेदों का अध्ययन करने वाले जो तीनों वेदों को अध्ययन करते हैं, यानी कि ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, वैसे चार होते हैं लेकिन पहले तीन होते थे, उसको बाद में विभाजन किया गया तीन, ठीक है। अब वो जो अध्ययन करते हैं तो क्या होता है कि उनको अलग अलग देवी देवताओं के विषय में पता है, क्योंकि अब वेद में सब कुछ लिखा हुआ है कि ये देवता ये देगा ये देवता। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो जो वेदों का अध्ययन करते हैं ना उन्हें अलग अलग देवी देवताओं के बारे में पता चल जाता है, फिर वो स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जितने भी मेरे को छोड़ के दूसरों को पूजा करना शुरू कर देते हैं। अब मुझे छोड़ा दूसरे को पकड़ा, ये समझ में आया, दूसरा वर्ड में बार बार इसीलिए पॉइंट आउट कर रही हूँ ताकि उधर आना है हम लोगों को। मुझे छोड़ दिया दूसरे को पकड़ा, सही है। एक लड़का हो उससे अगर कोई प्रेमी प्रेम उसकी प्रेम प्रियतम प्रेम करती है ना कोई लड़की, तो फिर बाद में उसको छोड़ के जब किसी और के पास जाती है तो क्या बोलते हैं, मुझे छोड़ दिया देखो उस दूसरे के पास चली गई, ठीक है। तो भगवान भी कह रहे हैं कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के पूजा करते हैं दूसरों की, और फिर सुरेंद्र लोकम, फिर इस तरह से वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं और देवताओं की तरह भोग भोगते हैं, देवताओं के जैसा उनको भी आनंद मिलता है। और उसके बाद क्या होता है 21 में बताया आप, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वो बहुत टाइम तक वो स्वर्ग लोक में भोग करते हैं, कौन जो मुझे छोड़कर दूसरों के पास चले जाते हैं ऐसा है। लेकिन क्या होता है क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, ये लाइन मुझे इतनी अच्छी लगती है, क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, लेकिन जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है, कौन सा पुण्य, मेरी भक्ति की नहीं थी, भक्ति पुण्य नहीं है, भक्ति भक्ति है, उसका पुण्य कभी क्षीण नहीं होता, लेकिन दूसरों की जो करते हैं वो भक्ति नहीं होती है, वो क्या होता है सौदागिरी होती है, तुम मैं तुम्हारी भक्ति करती हूँ तुम मुझे स्वर्ग लोक दे दो, तो ये जो पुण्य होता है ना वो खत्म होता है। कभी नहीं लिखा होगा भगवान श्री कृष्ण ने कि भक्ति खत्म होती है या भक्ति का क्षीण होता है, यहाँ पे साफ साफ बताया क्षीण पुण्य मृत्यु लोक मिशन्ति, जो उसने पुण्य किया था जो सौदागरी की थी उसका बैंक अकाउंट खत्म हो जाता है और वहां पर वापिस से उसे मृत्यु लोक में आना पड़ता है, सही है। एवं त्रयी धर्म मनोपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, और इस तरह से तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की घोषणा करते हैं, यानी कि तीनों वेद जो हैं उनमें क्या लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति कैसे होगी, इंद्रिय तृप्ति का हाईएस्ट जो जगह है ना वो है स्वर्ग लोक, इसे दूसरे मजहबों में कहा जाता है ना जन्नत में जाओ हूरे मिलेंगी वो करेंगे वो, ये इंद्रिय तृप्ति का साधन है, घिन आती है भक्तों को इस साधन से कि वहां पर हीरों के साथ हूरों के साथ जाके अय्याशी करते हैं और फिर समय जब उनका टाइम खत्म हो जाता है फिर यहाँ पर आके कीड़ा बनते हैं, ऐसा मतलब उनके उनको पता ही नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ बताया इंद्रिय सुख की घोषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा गदागतम काम कामा लभन्ते, जो इस तरह से अपनी इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति करने के लिए अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं उनको जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिलता है। और आगे भगवान ने कहा ये वाला श्लोक जो है ना वो 9th चैप्टर की जान है, जो श्लोक नंबर 22 है ना उसमें भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम। ये अनन्य जो नेक्स्ट श्लोक में आने वाला है ना उसका उद्घाटन इस श्लोक में हुआ है, पहले ही भगवान ने कहा अनन्यास, इसका ट्रांसलेशन में अगर आप लफ्जों के मीनिंग में देखोगे तो इसका मतलब लिखा हुआ है जिसका कोई अन्य लक्षण ना हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण, दूसरा कोई नहीं, अनन्य दूसरा कोई नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, सिर्फ और सिर्फ मेरा दूसरा किसी का भी नहीं चिंतन करता है, मुझको माँ मैंने जो सिर्फ और सिर्फ मेरा चिंतन करता है और किसी को भी नहीं करता है, ये जना पर उपासते, ये जना मतलब जो व्यक्ति पर उपासते, मतलब उपासते का मतलब होता है भक्ति करना, पूजा करना, लेकिन पर उपासते का मतलब एकदम परफेक्टली पूजा करना, एकदम परफेक्ट तरीके से जो अनन्य भाव से करता है, अनन्य मतलब दूसरे किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का करता है, तो वो बिल्कुल ठीक तरह से कर रहा है पूजा। और उसके साथ क्या होता है, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, तेषाम मतलब उनको, नित्य मतलब सदा, अभियुक्ता नाम मतलब भक्ति में लीन मनुष्य को, ऐसे जो कंटिन्यूअस भक्ति में लगे रहते हैं। कैसी भक्ति, उसको पहले ही बोल दिया अनन्य, मैं नथिंग एनीबॉडी एल्स, नथिंग एनी अदर अवतार, और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं, दूसरा कोई नहीं, अनन्य। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम। और इसके साथ मैं क्या करता हूँ, वो तो क्या करते हैं, दूसरे किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा चिंतन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, एकदम परफेक्टली करते हैं, तो उनके साथ मैं क्या करता हूँ, तेषाम उनको नित्याभियुक्ता नाम, जो कंटिन्यूअस मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, योग क्षेमम वहाम्यम, उनकी जितनी भी योग, योग मतलब आवश्यकता है, क्षेम मतलब सुरक्षा, आवश्यकता है मतलब अगर उनको सूर्य प्रकाश प्राप्त करना है ना, तो उनको सूर्य देव की ओर देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर वर्षा की आवश्यकता है तो दूसरे इंद्र देवता की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, अगर उसको कोई भी सांसारिक सुख जो तीन वेदों में लिखा हुआ है, देखो मैं आपको वापस वापस कहती हूँ कि हर श्लोक दूसरे श्लोक के साथ टच है, हम पूरी भगवद गीता पढ़ेंगे, मैं आपको एक एक शब्द बताऊंगी, एक दिन में नहीं होगा, आप एक केजी की क्लास भी जब कोई बच्चा स्टार्ट करता है तो एक दिन में टीचर पूरी किताब नहीं बता सकती। हमारी पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम टाइम नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि आज ही मुझे सब कुछ पता चल जाना चाहिए, मैं बता भी सकती हूँ, मैं एक दिन में सब कुछ बता भी सकती हूँ, लेकिन आपके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि वो एक दिन में आप ग्रहण कर सको, लेकिन है ना गुरु महाराज की कृपा है कि अगर आप बैठो, चलो ठीक है कितनी देर बैठ सकते हो बताऊंगी आपको, लेकिन यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को तो एटलीस्ट क्लियर कर दूं कि भगवान ने कहा योग क्षेम महाम्यम, उसको किसी भी देवी देवता के थ्रू जो चीज मिलने वाली है वो मेरे जरिए से मिलेगी, क्यों, क्योंकि अनन्या चिंतयन्तम, क्योंकि वो किसी और की पूजा नहीं कर रहा है, वो भले ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र चंद्र वरुण किसी की भी पूजा नहीं कर रहा है, उसको करने की जरूरत भी नहीं है, उसकी जो आवश्यकता है वो मैं पूरी करूंगा, क्योंकि पहले ही कह गए तपाम्य हम अहम वर्षम, गर्मी में देता हूँ, वर्षा में कर रहा हूँ, सब्जियों में जो है ना पावर में डाल रहा हूँ, तो दूसरी देवी देवताओं की जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत है, खाली तुमको मेरे पास आ जाओ, ठीक है। ये वाला श्लोक अगर समझ में आ जाए ना, तो इस वाले श्लोक के पास तो मतलब क्वेश्चन क्रिएट ही नहीं हो। देखो भगवान ने क्या कहा है, वापस एक दफा 22 मेरा प्रिय श्लोक है, इसको कंठस्थ कर लो आप लोग, अनन्या चिंतयन्तो माम, दूसरे किसी की भक्ति नहीं, खाली मेरी भक्ति करता है, ये जना पर उपासते, वो एकदम परफेक्टली भक्ति कर रहा है, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे भक्त को जो कंटिन्यूअस मेरी भक्ति में लीन रहता है, योग क्षेम महाम्याम, दूसरे देवी देवताओं के साथ तो मिलने वाला जो भी चीज है, उनकी जो भी आवश्यकता है, योग वहां अहम, मैं स्वयं आके उन्हें दे देता हूँ, क्यों, क्योंकि वो मेरे पास आए। और आगे भगवान कहते हैं, जहाँ पर हमारा क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये अप्यन्य देवता भक्त, लेकिन जो अनन्य चिंतयन्तो माम नहीं करते हैं, 22 और 23 को मिला रही हूँ मैं, ठीक है, जो अनन्य चिंतयन्तो माम नहीं करते हैं, ये अप अन्य देवता, लेकिन जो दूसरे देवी देवताओं का चिंतन करते हैं, मेरा नहीं करते हैं, अन्यों का करते हैं, तो ये अप्यन्य देवता भक्ता उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पे पहले क्या बताया भगवान ने कि दूसरों की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन मेरी भक्ति सही तरह से करते हैं, तो समझो वो परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धायान्विता, लेकिन दूसरी सारे देवी देवताओं को, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता उसमें लिखे हुए हैं वेदों में, उन सारे देवी देवताओं को, दूसरों को, सबको बहुत ही श्रद्धा से पूछता है। यहाँ पर ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धायान्विता, मुझे छोड़कर दूसरे सारे देवी देवताओं को बहुत ही श्रद्धा से पूजता है। ते भी मामे व कौनते है, क्योंकि अब एक ही चीज है, उसमें से मैं निकला हूँ, सॉरी वो सब मुझ में से निकले हैं, तो मेरा सारा पावर उनके अंदर भी है। अब उन सबको मिला के सबकी पूजा करता है, अन्य देवता दूसरे सबकी पूजा करता है बहुत ही श्रद्धा से, लेकिन मेरे को निकाल देता है, मेरी नहीं करता है। यानी कि सारे पत्तों को पानी देता है लेकिन वृक्ष की मूल में पानी नहीं दे रहा है, जड़ में पानी नहीं कर रहा है। तो भगवान ने कहा फिर भी गलत नहीं है, एक तरह से वो भी मेरी ही पूजा करते हैं, गलत है। हाँ, ते भी माँ में वो कौन से है, वो भी मेरी ही पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसी दरख्त के पत्तों को पानी दे रहे हैं ना, लेकिन यजंत्या विधि पूर्वकम, ये तरीका गलत है उसका, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको क्या करना चाहिए था, वृक्ष की मूल में पानी दे देना चाहिए था, पत्तों को पानी देने की जरूरत नहीं थी। तो इसका तरीका गलत है कि दूसरों की तो पूजा कर रहा है, मुझे छोड़ रहा है, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, हे कुंती पुत्र, जो अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं, यानी कि शुरू में क्या दिया 21 में, अनन्यास, दूसरों की नहीं खाली मेरी, लेकिन यहाँ पर कहा मेरी नहीं खाली दूसरों की, समझ में आ? तो दूसरों की पूजा करता है, भक्ति में लगा रहता है और उनकी श्रद्धा से पूजा करता है, वास्तव में वो भी मेरी पूजा करता है, लेकिन ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, खाली मेरी पूजा करनी चाहिए। भगवान का तात्पर्य ये है। होप यू आर सेटिस्फाइड नाउ। हरी बोल।